जाने के उछल हो जाने के बाद लोग उद्धव से ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्रिका समझाने के लिए जहां भगवान नर नारायण का अर्चा विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारण में से एक यह एक कारण है जो आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा है, वह मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त के सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से तल्लीन, भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। ओम अज्ञानंत मीरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाभूतं साक्षात् येन भूतले स्वयं रूप सदानं सदाशिवानन्दकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीसुपरमहं श्रीगुरुं वैद्यमानसं श्रीरूपं सकृजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषपुण्यवादी पश्यतिदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। तो आप अभी ये जो प्रसंग सुन रहे हैं भगवान की अंतर्धान होने की लीला, भगवान की धराधाम से अपने स्वधाम को प्रयाण करने का ये लीला, जबकि भागवत के प्रसंग विदुर का मैत्रेय के पास जाना, ये प्रसंग में ये बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग अभी जो विषय चल रहा है। सुखदेव जी का ये उक्ति है, लेकिन ये श्लोक तो भगवान की है। भगवान जो पहले श्लोक में बताया गया चिंतन, भगवान सोच रहे हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को पूछा कि जब जदुवंश विनाश हो गया, जदु में सारे बड़े चढ़े लोग चले गए, ऐसा कि स्वयं श्री हरि भी पधार गए, तो भाई उद्धव जैसे कि बहुत बड़े नेता थे यादवों के, वो कैसे रह गए, क्यों बचे? तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी एक प्रसंग बताते हैं भगवान की स्वधाम पधारने की लीला, किस प्रकार भगवान जाते हैं। तो भगवान की चिंता है, भगवान हमेशा इतने करुणा वरुणा रहे हैं, हमेशा अपने करुणा से बद्ध जीवों की उद्धार के लिए सोचते हैं, और जीव उद्धार के लिए एकमात्र उपाय है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान भी प्राप्त होता है भगवत भक्ति से, जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखते हैं भगवत ज्ञान के तीन प्रकार से जानते हैं भगवान की, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, लेकिन ये सब आंशिक, केवल भगवत ज्ञान ही परिपूर्ण है, और ये भगवत ज्ञान को भी केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी को भगवान गीता में भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्। केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मेरा धाम कहा जा सकता है। तो ये भगवत धाम की, भगवान की जो स्वयं यात्रा, उसके वर्णन करते हैं। इसमें कहा गया अस्मान लोकात उपरते, इस लोक में भगवान अभी उपसंहार करने जा रहे हैं अपने अवतार चरित को, तो हम उसी का ऊपर थोड़ा बताना चाहते हैं, समय तो कम है। अभी अभी कुछ दिन पहले हम द्वारका गए थे, उसमें उस दिव्य क्षेत्र प्रभास क्षेत्र को स्पर्श करके आए, हम तो देख नहीं सकते हैं उसको अपने चरण चक्षु से, केवल स्पर्श मात्र कर सकते हैं। तो आप अभी उस समय पर ध्यान दीजिए जब जादव कुमार ने अपने खेल कूद में मस्ती हो करके वो पिंडार के क्षेत्र तक चले गए, वहां भगवान के दर्शन के लिए लालायित सारे ऋषि महर्षि का तो थानी लगा रहा था, बड़े बड़े ऋषियों का, और पता नहीं आज भगवत इच्छा से उनका कैसे ये मती हुआ और मुनियों से ठट्टा करने गए, सांब को सजा करके स्त्री बना करके जाके मजाक करने लगे ऋषियों से। अब ऋषि तो सर्वज्ञ होते हैं, वो तो समझ लिए उनका आसर और बोले अच्छा ये स्त्री क्या प्रसव करना चाहते हैं, वो तो एक मुसल प्रसव करेगा और इसी से आपका कुल नाश हो जाएगा, यदुवंश भंश होगा। अरे कांपने लगे कुमार ने सुनकर के, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अरे ऋषियों के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन अब होगा क्या, अब अरे तू सांब है, अब कपड़ा उतारे लेके कपड़ा थोड़ी है, तो मुसल निकला। अरे बाप रे बाप, अभी से सत्य प्रतीत हो गया, कपड़ा मुसल में परिणत हो गया, अब तो काला पड़ गया, उनका कांतिहीन हो गया मुख, भाग चले। अब ये साहसी नहीं था कि द्वारकाधीश के पास जाएं, उनको बताएं, अभी तक कोई भी छोटा सा छोटा घटना हो जाए दौड़ दौड़ पड़ते थे कृष्ण के पास, लेकिन आज साहसी नहीं गए, नहीं वात्सल्य के आशा करके और सुधर्मा सुभा सीधा महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गए, जहां बड़े बड़े यादव से बैठे हुए थे, और ये यादव कुमार का एकांतिहीन श्रीमुख को देख करके सब बोले अरे बच्चों का इसे बड़े यादव कहा गया, पूछे तो सब एक झट से बता दिए इसे इसे घटना हुआ। सुन करके उग्रसेन महाराज ने बोले बच्चों कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मुसल ही है ना, वही हमारा नास्तिक कारण बताया ना, कोई बात नहीं, उसको लेकर के रेत रेत करके पानी में समुद्र फेंकना, खत्म रहेगा ना, रहे बांस ना बजे बांस, मिटा दो। किसी ने कोई सोचा ही नहीं, बड़े बड़े सब डरे हुए थे, सब हाँ सम्मति दे दी, वही हुआ, लेकर के बड़े सारे लोग समुद्र किनारे से घिसते रहे, फेन करके समुद्र में मिला दिए, थोड़ा सा बच गया था टुकड़ा, हाथ घिस रहा था घिसने में, तो उस पानी में फेंक दे, छोटा सा टुकड़े में क्या होगा, इतनी बड़ी मुश्किल घिस डाले। लेकिन ब्रह्मा साहब को तो भगवत इच्छा और तो टाला नहीं जा सकता, इतने बड़े कांड घट गया ऋषियों का, ब्रह्मा साहब यादव कुल के प्रति हुआ, लेकिन द्वारकाधीश जैसे कुछ नहीं जानते शांत प्रति थे, शंकरषण भी शांत है, महामंत्री उद्धव को ना कुछ कोई कहा ना कोई पूछा, लेकिन आज आकाश में समुद्र में पृथ्वी पर महा अपशकुन का लक्षण, उसको देख करके महामंत्री विदुर चिंतित हो गए, एकांत में अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों पर जा पहुंचे, हाथ जोड़ करके काकुति विनती करके बोले हे प्रभु, हे परम समर्थ, हे परम उदार, ये आपकी क्या लीला है, आप ऋषियों का साप का परिहार करने के लिए कोई उपाय नहीं किया, इससे पता चलता है कि जदुकुल का विनाश भी आपका अभिष्ट है, लगता है आप भी आप लीला स्मरण करने वाले हैं, हे प्रभु मैं तो आपके उचिष्ट भोगी दास हूं, आपके उतारी हुई माला, आपके पहने हुई वस्त्र, आपके दिव्य अंगराग ही मेरा उपभोग्य है, आप जब स्वधाम जाने के लिए इच्छा करते हैं तो प्रभु कृपा करके मुझे भी आपके साथ ले चलो, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता, आपके चरण सन्निधि व्यय को मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन पता नहीं आज मित्र और मंत्री उद्धव को भगवान मधुसूदन ने कुछ आश्वासन वाणी नहीं सुनाई, उदासीन सा रहे, मेघ गंभीर वाणी से जनार्दन बोले उद्धव आपका अनुमान ठीक है, ब्रह्मादि लोकपालगण मुझे अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे अभी अवतार चरित्र को उपसंहार करके अपने स्वधाम प्रत्यावर्तन करने के समय हो चुका है, अब तो मुझे स्वधाम प्रत्यावर्तन करना ही होगा, लेकिन मैं चिंतित हूं कि इस पतित जीवों का उद्धार के आधार जो भक्ति है, भक्ति में जो ज्ञान है, जो मेरा स्वरूप ज्ञान है, मेरा सुष्ट ज्ञान है, मुझे प्राप्त होने का जो उपाय है, उसको मैं सृष्टि के प्रारंभ से पद्मजों ने ब्रह्मा को दिया था, लेकिन वो तो उस दिव्य परंपरा में से रहा गया। इस कलिहत जीव को उनको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? कौन इस ज्ञान के अधिकारी है जिससे परंपरा को निभाए? उद्धव अपने स्वामी का इच्छा को हमेशा ही पालन करते रहे। आज फिर इतने बड़े ज्ञानी जो बृहस्पति के शिष्य उद्धव भगवान के मुख से ज्ञान के उपदेश कैसे ना सुने, मन में लीला और लोग जागरूक हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु अगर मुझे आपने इस ज्ञान के अधिकारी समझो तो मुझे कृपा करके ज्ञान के उपदेश करे जो आपने ब्रह्मा जी को किए। भगवान ने बोले, उद्धव आप ही उचित अधिकारी, आपके सभ्यता, आपके सदाचार, आपके भक्ति और सेवा मेरा हृदय को अभिभूत कर चुका है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को धारण करो और उसका परंपरा को रक्षा करो। लेकिन उद्धव आज से सातवां दिन इस द्वारका को समुद्र डूब गए और मैं धरा को छोड़ने से तुरंत कली आक्रमण करेगा, लोगों का धर्म में रुचि नहीं रहेगा, अधर्म का बलवाल हो जाएगा, तुझे इस देश पर रहने का मुझे उचित नहीं लगता, तू इस ज्ञान को धारण करके सत्ययुग के धाम तीर्थ बद्रिका चले जा, यहां पुण्य पावन मेरे चरण भवन जल अलकानंदा बह रहा है, उसके दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाएगा और मेरे अवतार नर नारायण के आश्रम में आप रहो, मेरा यही इच्छा। तो उद्धव जी तो रोते रोते भगवान के मुख के कमल की ओर देखे रहे। भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, ज्ञान के उपदेश दिए। बहुत लंबे समय तक भागवत श्रीमद भागवत के एकादश स्कंद के छठा अध्याय से लेकर के तेईसवें अध्याय तक लगभग भगवत गीता में भगवान अर्जुन को तो अष्टादश अध्याय में ज्ञान का उपदेश किए, लेकिन उद्धव को उससे ज्यादा और पांच अध्याय दिए। तेईसवें अध्याय में उद्धव को ज्ञान का उपदेश किए और उद्धव तो अति उत्कृष्ट समय व्यक्ति थे, प्रार्थी थे, हमारे जैसे तो थे नहीं। उनको केवल सुनना ही था, सुनने मात्र से कृतकृत्य हो जाना था, उससे पचे कुछ करना ही नहीं था। और उपदेश दिया कौन? अरे स्वयं भगवान के मुख कमल से जो उपदेश उद्धव को तत्व ज्ञान ना होकर रहेगा कैसे? लेकिन ये संपूर्ण तत्व ज्ञान होने पर भी उन प्रभु के अति आकर्षक पाद पद्म के सानिध्य से छूटना ये कैसे सहन हो सकता है? अब जब समय आ गया, भगवान ने उपदेश के अंत में अर्जुन को उद्धव को निश्चित बोल दिया कि उद्धव आप बद्रिका संगमन करो। अब जब प्रभु के चरण से बिछुड़ने की समय आया और उद्धव व्याकुल व्यथित हो उठे, बारंबार अपने स्वामी, अपने आराध्य, अपने प्रभु के श्री चरण में बारंबार प्रणिपात करते हुए, अंग परिक्रमा करते हुए जाते और आते, जा नहीं सकते थोड़ी दूर जाते पर लौट आते, शायद कृष्णचंद्र अभी बोल दे कि थोड़ी देर रुक जाओ, मन नहीं बुझता कि उसको छोड़ के जाओ कैसे जाए। और इधर क्या हुआ, उद्धव बद्रिका के लिए द्वारका से प्रस्थान करने का तैयारी ही कर रहे थे, द्वारिका से निकले ही नहीं, यहां पूरे द्वारका में महा महा अपशकुन होने लगा, आकाश से रक्त बरसने लगा। गायों के दुहते समय दूध के वजह से रक्त आने लगा, यज्ञ की हवन से घी की आहुति देते समय ज्वाला ना उठी केवल धुआं ही आया, रात्रि में सोते समय सबको भा भा मृत्यु का स्वप्न आने लगा, विकट पशुओं का चित्कार, मंदिरों में देवताओं की आंख से आंसू दिखने लगे, भयंकर उत्पात, आकाश से, अंतरिक्ष से, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पृथ्वी सभी पर केवल अपशकुन की शांता लग गया। सबने घबराए। द्वारिकाधीश एक दिन सुधर्मा स्वभाव घोषणा की कि हे जलकुलवासी, अब सबको पता है महर्षियों की ब्रह्मशाप, उसको तो डाला नहीं जा सकता। उसके ऊपर हमारे द्वारकापुरी समुद्र के गर्भ के अंदर है, पता नहीं किस समय क्या घटेगा। तो मुझे तो ये लगता है एक क्षण भी यहां नहीं रहना उचित, क्या किया जाए, तुरंत उसको त्याग देना होगा। जितने बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनको तुरंत शंखोधार क्षेत्र में भेज दिया जाए और बाकी सब बचे कुछ यादव तरुण सब प्रभास चले जाए, वहां जाकर के व्रत उपवास कुछ प्रायश्चित के क्रिया करें ताकि इतने बड़े अरिष्ट से कुछ समन हो। तो ये अपशकुन को कई दिनों से देखकर तो सभी बड़े घबराए हुए थे, तुरंत ही सब सहमति प्रकट कर दी और तुरंत तैयारी होने लगा। उग्रसेन, वासुदेव, सुरसेन आदि बड़े बूढ़े लोग और बच्चे और स्त्रियों के समाज को लेकर शंखधार क्षेत्र चल पड़े। बाकी बचे कुछ लाखों यादव तरुण कुमार और नौका से समुद्र पार करने करके रथ में बैठ करके रातारात चल लिए प्रभास की ओर। सुबह सुबह ही प्रभास तीर्थ में पहुंचे। अति पावन तीर्थ है प्रभास, सरस्वती आदि नदी का त्रिवेणी संगम है समुद्र के साथ, जहां पर चंद्रमा को जब दक्षराज ने साप दिए थे, उनको चश्मा का व्याधि हुआ था, वहीं स्नान करके सोमनाथ की उपासना करके उनके साप मुक्त हो गया था। इस पावन क्षेत्र पर आज सारे यादव टूट पड़े। पुराण में बताया गया द्वारका में 56 करोड़ यादव रहा करते थे। अब हमारा दिमाग नहीं, भारत के लोकसंख्या के हिसाब से द्वारका कितने बड़ा होगा, ये उनके हिसाब की गलत। और सुबह सुबह प्रभास में पहुंच करके पुण्य सरिता सप्तस्वती सरस्वती में सब स्नान किए, उपवास किए, व्रत प्रतिग्रह किए और ब्राह्मण को बुला करके खूब दान दक्षिणा किए, यज्ञ हवन किए और मध्यान्ह में भरपूर भोजन करवाए सबको। अब तक तो सब क्रियाकर्म भगवान की सम्मति से चल रहा था, लेकिन ब्राह्मणों को बहुत भली प्रकार से भोजन दान वान करने के उपरांत सरजद कुमार ने भोजन के लिए बैठे, खूब पेट भर के भोजन किए, व्रत था उपवास था ही, उपवास के पारण तीर्थ में व्रत उपवास करने के बाद पारण कैसा होना चाहिए, अभिशान करके पारण करना चाहिए। लेकिन जहां युवकों का भीड़ हो, कोई बड़े बूढ़े वयोवृद्ध ना हो, उनमें से बुद्धि आएगा कहां, चंचलता तो है ही। अच्छे से अच्छे फिस्ट खाने लगे, कौन हवी समझ रहे, खाए तो खाए, खाने के बाद मधु से बनी मैरक नाम के सुराकू डट करके पीने लगे सब, सब तो सब पीने लगे। आज तो मस्ती है, क्या है, अरे सब मिट गया, पाप मिट गया, प्रायश्चित हो गया, पुण्य नदी पर स्नान किए, व्रत किए, उपवास किए, अब तो मजा। भगवत इच्छा से सुरा के नशा से सब मोहित हो उठे। कोई बुद्ध तो थे ही नहीं, अकेले वयस्क व्यक्ति थे अक्रूर, वो भी उन युवाओं के साथ युवक बन चुके थे, उनके साथ दे रहे थे। और शंकरषण और श्री कृष्ण तो आज तटस्थ थे कि उनका अपना तो दूसरा कुछ काम था। तो हुआ क्या, सूर्य के नशे से ऐसे ही होता है, आपस में विवाद बातचीत होने लगा। सब बड़े बड़े वीर थे, सूरवीर थे, आपने अंदर प्रचंड बल का सबके घमंड था, अभिमान से आकर के युक्ति होने लगा, युक्ति से विवाद, विवाद ऐसे रूप से परिणत हो गया, सब अपने अपने रथ पर वाहन पर जाकर बैठे और अस्त्र उठा लिए। हम जानते हैं कि छोटे छोटे विवाह से झगड़ा में लाठी पाटी हो जाता है, यही हुआ, विवेक तो खो बैठे थे। अब महावीर थे, सब अपने अपने रथों पर, अश्वों पर, गजों पर बैठ करके अस्त्र उत्तोलन कर दिए, और जैसे शत्रुओं के ऊपर महासंग्राम करते हैं, ऐसे संग्राम चल पड़ा, घोर संग्राम। कोई हिचके नहीं, बिना हिचके सब दिव्यास्त्र के प्रयोग करने लगे। आज प्रतिदिन स्तंभ से भिड़ गए थे, अनिरुद्ध सत्य किसे भिड़ गए थे, अक्रूर भोज से भिड़ गए थे। अरे कौन किसका परिचित कोई नहीं देखता था, पिता पुत्र से, मामा भांजा से, भाई भाई से, चाचा भतीजा से, कोई नहीं देख रहा था। जो सामने आया डंट गया, धनुर्बाण, भाला, अस्त्र, त्रिशूल, तोमर, गदा, तलवार, जो हाथ में आया खून कर चलाने लगे। उसका महायुद्ध का परिणाम होने गया। कुछ ही समय के उपरांत पूरे जुजर व्यापी धरती कटे पटे अश्व, गज, रथ और सबों से मिट गया। सबका अस्त्र शस्त्र उपरांत हो गया, अक्षय त्रुणिल भी खत्म हो गया। अब पास में कोई अस्त्र ही नहीं रहा, सब गज अश्व रथ तो टूट कर मरे पड़े थे। अब क्या करे, अस्त्र क्या करे, तो वही जिस मुसल को घिसते घिसते जो फेन बन गया था, मुसल का चूर्ण जो पानी में समुद्र में बना था, वो बहते बहते द्वारका से समुद्र में जाकर के प्रभास के समुद्र के किनारे एक प्रकार घास बन गई थी। उसका नाम है एरका, एरका की घास खड़ी हुई थी, नीले नीले घास। अब कोई अस्त्र नहीं रहा, रोष में आकर के जद कुमारों ने घास मुट्ठी में उखाड़ ली, उसको उठाई, अरे अरे ये घास तो उनके हाथ में आकर वज्र बन गया, उसके आघात तो सारे अस्त्रों से प्रचंड प्रतीत होने लगा, उनके सामने बड़े बड़े अस्त्र टूट गए। अब पता नहीं कौन शुरू किया घास को उखाड़ना, सभी ने घास उखाड़ ली और सभी के हाथ में एरकाई घास, ब्रह्म साहब को कैसे गिरा दिया, और उसी से घास से मुट्ठी से मारने लगे। अब शंकर्षण और कृष्णचंद्र दूर से देख रहे थे महासम। अब रोकने के लिए आए, रोके कि ऐसा मत करो, रुको रुको, अब बुद्धि तो भ्रमित हो चुका था। उन्होंने सोचे ही, अरे हमारे प्रतिपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, सकड़ो जद कुमार ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। अब हुआ क्या, अभी भगवान को बलराम को तो आपने आयुधों को तो स्मरण करने का समय अभी था नहीं, उन्हें भी आपने हाथ से एरका की घास की मुट्ठी उठा ली और अपने ही सृष्टि को आपने संहार करने में लग गया, दे मार। और रात पूरी होते होते ही प्रभात के आने से पहले रात भर केवल उस अति पावन तीर्थ क्षेत्र में केवल महान चित्कार, रोदन, क्रंदन की ध्वनि दिशा व्याप्त कर रहा था। अभी सुबह होते ही केवल शांत ही शांत, मील मीलो मीलो व्यापी कटे फटे कुचले सब पट गए हैं, सारे चित्कार रोदन शांत है। सरस्वती के पावन जल और धरती और समुद्र तक भी लाल हो चुका है ताजा रक्त से। सुबह सुबह केवल बचे दो पुरुष, भगवान अनंत और श्री कृष्णचंद्र, आपाद मस्तक रक्त से विभूषित, लेकिन पास में ही नहीं है, दूर है, लाखों लाखों जादव कुमार अनंत हो चुके हैं। अब एक दूसरे को पुकारते भी नहीं, भगवान अनंत देखे कृष्ण की ओर हसमुख हैं, कुछ बोले नहीं, समझ गए अभिप्राय, ये सब दुख वैराग्य और आदि इंद्रिय संयम अगर साधन तो जीव को करना होता है, लेकिन भगवान को जब इस नरलीला तो करना ही नहीं थी, अब तो स्वधाम जाना ही था, उनको क्या ऐसा कुछ करना था, सोच साधन इंद्रिय निग्रह आदि करना था। अरे उनका तो कोई स्थूल लिंग कारण शरीर ही नहीं, अंतकरण ही नहीं उनका, साक्षात विशुद्ध चिन्मय सारे जीव के गुरु श्री बलराम, उनको ये मोह ये दुख ये रक्त क्या उनको स्पर्श भी करता। समुद्र के किनारे बैठ गए आपने स्वरूप को, क्योंकि अभी उनको भगवान के आने से पहले उनको आना हुआ सेवा के लिए, अब जाने से पहले उनको जाना ही होगा सेवा, भगवान जाने के जा रहे हैं समझ गए, अब पहले मुझे जाना होगा उनको सेवा के लिए। तब समुद्र के किनारे बैठ गए, बैठ करके और आपने जो शेष रूप को ध्यान किए उस शुद्ध विग्रह से बलराम के विग्रह के मुख से, और सहस्र फणी मोई शेष निकले और दिखते ही दिखते समुद्र के महानील जल राशि में अदृश्य हो प्रवेश कर गए। और दूर से भगवान अपने अग्रज की इसी प्रयास को देखे, कुछ बोले नहीं, कुछ संकेत भी नहीं किए, उनके पास भी नहीं गए, अब उस क्षेत्र से तुरंत हट करके दूर चले गए, बहुत देर बड़ी पड़े हुए हैं। थोड़े दूर जा करके कुछ जंगल से उसके अंदर पीपल पेड़ के नीचे दाहिने पैर के ऊपर पांव पैर को रख करके सिद्धासन में बैठ गए, शांत चित्त होकर के बैठ गए। भगवान आज जैसे अंतिम विश्राम करने जा रहे हैं, भोर भोर का समय, क्योंकि रात भर यात्रा करके जदु ने आए थे प्रभास में, सुबह सुबह पहुंचे, सुबह सुबह प्रातः स्नान करके व्रत ध्यान ये सब तपश्चर्या सब शुरू हुआ था, मध्यान्ह में भोजन दान आदि हुआ था, और दिन के चतुर्थ पहर से विवाद छड़ा था और महासंग्राम हुआ, सायंकाल से पूरे भोर संग्राम रात भर हुआ, सुबह सुबह इस महासमाप्त, और अरुणोदय के पूर्व ही बलराम की सुधामगमन। अब प्रातः आगमन से भगवान विश्राम करने जा रहे हैं अश्वत्थ के नीचे, अपने दक्षिण पैर के ऊपर वाम पैर को रखा करके स्वर्ण प्रतिम पीताम्बर पहन करके मुकुटमणि पूरे दिव्य अलंकार से भूषित और पिप्पल को आस्था करके भगवान बैठ गए। हुआ क्या, एक सबर पल्ली था दूर से, जरा नामक सबर, उनका जीविका था शिकार करके जीविका निर्वाह करना, शिकारी लोग हैं भील, शिकार करके उनके जीविका निर्वाह करते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं आखट में, क्योंकि उनको पता है जो मांसभोजी हिंस्र प्राणी है वो रात्रि के पिछले प्रहर से अपने गुफा में आके सोते हैं रात भर अपने शिकार में, और जो तृणचारी वनभोजी पशु हैं वो सब सुबह सुबह उठ करके तृण सब चरने के लिए निकल पड़ते हैं, वो तो जानते हैं कि अभी अभी हिंस्र पशु सोने जाएंगे और सुबह सुबह वो घास चरने के लिए निकल पड़ते हैं, उस शिकारी को पता था जरा को, तो मृग शिकार के उपलक्ष्य में उन्होंने सुबह सुबह आज निकल पड़ा था। उस बेचारा को पता नहीं कि इतने भीड़ इतने महायुद्ध में इसे आस पास में कैसे कोई पशु आवे, लेकिन पता नहीं थोड़ा दूर उसका झोंपड़ी होगा, उसको पता नहीं था, रात भर इतने हिचकिचाहट कुछ पता नहीं, सुबह सुबह आपने नित्य प्रति आपने धनुष में बाण चढ़ा करके आखट में निकल पड़ा था और जंगल में ढूंढ रहा था कोई पशु को, इतने में दिखाई पड़ा पीपल के नीचे झाड़ी के अंदर दूर से दिखाई पड़ा। भगवान ने अपने वाम तल पर वाम तल के अरुणिमा उसको दृष्टि हुआ, वो सोचा आहा कोई मृग बोले वो पीपल के नीचे अभी बैठा हुआ है, अभी घास चरने के लिए उठा ही नहीं, तो धनुष के ऊपर बाण से चढ़ा रखा था और वही बाण था, वही प्रसप्त मुसल का बचा हुआ खंड था, वही था, उसी को अपने बाण के नोक पर लगा हुआ और लक्ष्य धारण करके बाण चला दी। मृग की शिकार की इच्छा से वो बाण चला दी, अभी सुबह का प्रकाश हो चुका था। ब्राण मार करके उनने उत्साह से उठ करके धनुष को हाथ में लेकर के दौड़ पड़ा कि हाथ मृग कहीं भाग ना जाए, हाथ मृग भाग ना जाए, इसी आशा से लखे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे जैसे पास आया ऐसे ऐसे क्या हुआ, उनके शरीर कांपने लगा, हाथ से धनुष गिर गया, पास आकर बीकर होकर के गिर पड़ा। ये मैं क्या कर दिया, किसको बाण चला दिया? अरे जिसको बड़े बड़े मुनि ऋषि ध्यान करके तप करके जिसके चरण को प्राप्त करने के लिए नहीं कर पाते, जिसको स्मरण मात्र से हम जैसे पाप जीव भी मुक्त हो जाते हैं, उन महाप्रतापी द्वारकाधीश के चरण में मैंने इतने बड़े पाप कर दिए, उनके ऊपर बाण चला दिया। हाँ, रोते पीटते घुटने पर बैठ करके हाथ जोड़ करके बोलने लगी, हे मधुसूदन, मुझसे बड़ा भूल हो गया, अनजान में मैं मृग समझ करके आपके ऊपर राघात किया, मुझ पशुघाती पापिष्ठ को तुरंत शास्ति दीजिए, मुझे तुरंत मार दीजिए ताकि मैं बच करके और ऐसा गलती ना करूं, और कोई सदपुरुष के ऊपर इसे सराघात ना करूं, तुरंत दंड दीजिए। ऐसे रो करे गिड़गिड़ा करके हाथ छोड़कर प्रार्थना करने लगा, बचने के लिए उसका इच्छा नहीं था, बड़े पश्चाताप कर रहा था। लेकिन मधुसूदन मेघ गंभीर वाणी से बोलने लगे, जरा उसको सोचो मत, तूने किया क्या, तूने तो वही किया जो मैं चाहता था, सोच मत करो। पुण्यात्मा को प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग लोक है, आप मेरे आज्ञा से ही जाओ। अरे स्वर्ग की प्राप्ति, जिस स्वर्ग की प्राप्त करने के लिए जजाति ने बहुत भारी यज्ञ किया था, विश्वामित्र ने अपने अपार तप शक्ति को लगा करके उनको स्वर्ग भेज दिया, लेकिन सूर्य ने उसको एंट्री पास न देकर पीछे भटक दिया, प्रवेश नहीं कर सकते। इस दुर्लभ स्वर्ग को, इस जरा व्याध को कृष्णचंद्र ने इसे सहज ही दे दिया। अपराधी को क्षमा कर देने वाले महापुरुष बहुत सुने गए देखे गए, लेकिन अपराधी को पुरस्कार दे करके इसे पुरस्कृत करने वाला केवल पुरुषोत्तम ही हो सकते हैं। तुरंत ही आकाश से दिव्य विमान उतरा, देखते ही देखते जरा देव रूप प्राप्त किया और अपने प्रभु के चरण में पाणिपात करके परिक्रमा करके विमान में चढ़ा, देखते देखते अंतरिक्ष में चला गया। यहां हुआ क्या, अब रात भर के महासंग्राम, कृष्ण और राम को तो तटस्थ से संग्राम से भाग नहीं लेते थे, अब रोकने पर ना रुके तब संग्राम में लग गए। लेकिन उन दोनों भाइयों के जो कार था, जो रथ था, वो क्षेत्र से थोड़ी दूर अभी पार्किंग हुआ था, और बलराम के स्वधाम गमन के तुरंत बाद ही उनके आयुध, उनके रथ स्वयंगी अप्रकट होकर अदृश्य हो गए। अब था भगवान की रथ और उनके सारथी दारुक, जो मथुरा से उनके साथ चले आए हैं, कभी भी अपने स्वामी को नहीं छोड़े, स्वामी के पक्का सेवक है दारू। आपने आंख के सामने महासंग्राम देख करके, अकल्पनीय युद्ध को देख करके, वो तो केवल यही सोच रहा था, कहां मेरे स्वामी, द्वारिकाधीश कहां गए, कोई दिखाई नहीं पड़ रहे, कहां है उनका पास से बराम के जस्त रथ तो अदृश्य हो गया। दारुक ने गरुड़ ध्वज रथ को लेकर के चलने लगा, सामने महासमर रूपी प्रांगण से केवल जोजन व्यापी कटे फटे कुचले सब के ऊपर गरुड़ ध्वज रथ चल रहा था। उनको ना सोचने का शक्ति थी, ना दिशा का ज्ञान था, रथ चला रहा था, पता नहीं कहां ले जा रहा हूं, केवल एक धूल, मेरे स्वामी कहां है। इतने में अति परिचित सौरभ नासिका में लगने लगा, वायु के झोंक आने लगा, वही परिचित सुगंध नील कमल के किंजल मिश्रित तुलसी के सुगंध। अरे आपने स्वामी का इस चरण तुलसी का गंध कैसे भूल सकता है दारुक दारुक। अब उस सुगंध की ओर चलाने लगा, ढूंढते ढूंढते वही स्थान पर पहुंच गया। दूर से देखा शांत चित्त बहु, वही द्वारिकाधीश वही मुकुट पहने हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सारे दिव्य अलंकार से आभूषित, सारे अस्त्र शस्त्र चारों तरफ विराजमान हैं, शांत चित्त बैठे हुए हैं। जिस रूप को जरा ने देखा था, कोई मुख में कोई भ्रुकुंचन नहीं, रोष के वेदना के कोई चिन्ह मात्र नहीं, ऐसे शांत प्रशांत चित्त से भगवान बैठे हुए हैं। वाम पद तल पर उस सर का अग्रभाग पूरा पूरा चुभ चुका था। अगर किसी का पैर में कोई कांटा लग जाए तो कितने वेदना होगा, अगर कोई खील गड़ जाए किसका पैर में उसी को पता होगा, आप सबको पता नहीं। अगर पैर में कोई कांटा चुभ जाए, बड़े खील घुट जाए तो पता, यहां तो खील नहीं, इतने बड़े सर पूरा को पूरा चुभा था। भगवान ने नाम को उसको निकालने के प्रयास भी किए थे, ऐसे शांत ना कोई वेदना के चिन्ह नहीं था। दारुक ने रथ पार्किंग करके अपने स्वामी के पास आया, प्रणिपात दंडवत प्रणाम किया, आश्चर्य होकर देख रहा था और अति आश्चर्य देखा कि पीछे मोड़ करके जो रथ गरुड़ध्वज था अभी उनके देखते देखते ऊपर उठे, आकाश में उदृश्य घोड़े के साथ। क्या हो रहा है, अति आश्चर्य, ये रथ से उतरा घोड़े के साथ रथ चंपट। अब पीछे मुड़ करके देखा कि भगवान के शंख चक्र गदा पद्म कुमुद की गदा नंदक तलवार सब अपने आप स्वरूप लेकर के एक से एक सब जाने लगे, दीजिए सब अपने आप स्वरूप में चले गए। ये सब देखते रहे, सब आप जा रहे हैं, दृश्य हो जा रहे। अति विस्मय में दारू केवल मूर्छित नहीं हुआ, यही आश्चर्य की बात है, हाथ जोड़ करके पूछने लगा, हे प्रभु ये क्या हो रहा, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने दारू को बोले, दारू मेरे साथ इतने दिन रहने के बाद तू सुख से अभिभूत मत हो, अब तू द्वारका जा, द्वारका जाओ और द्वारका में शंखधार क्षेत्र में सुरसेन वासुदेव कृष्ण आदियों को खबर दो, ये जदुवंश के समाप्त के उनको सूचना दो, अग्रज के स्वधाम प्रयाण के खबर दो, और मेरे दशा अपने वाम तल पर संकेत करके बोले, मेरा ये दशा भी उनको बता देना। जा, जन्म से स्वामी भक्त हैं दारू, केवल स्वामी के आदेश ही पालन करते आया, आज किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वही करना बैठा। जो कर्तव्य निष्ठ है उनको कर्तव्य ऐसे जबरानी करा लेता है, काम मरते दम पर भी इसे काम करने के लिए लग जाते। द्वारका लेके चल दिया, कैसे गया एक वर्णना नहीं किया जा सकता, किस अवस्था से किस मति किस गति से गया बोला नहीं जा सकता, जैसे भी हो द्वारका गया, बात बात में। अब मधुसूदन अकेले रह गए, कहां से घूमते फिरते फटकते कृष्ण द्वैपायन व्यास के अंतरंग सुहृद मैत्रेय मुनि तीर्थ तीर्थाटन में आकर वहीं पहुंचे, और वहीं अभी दस करीब बजा होगा आके ही पहुंच गए, और अकेले नहीं थे, साथ में उद्धव जी तो द्वारिका से निकल से बद्रिका जाने के लिए, लेकिन स्वामी के चरण को छोड़कर कहां बद्रिका जा पाते, मन नहीं माना। और जाते समय खबर सुने कि सारे जादव ने द्वारका छोड़ करके प्रभास की ओर चल दिए, क्यों चले क्या हुआ वो भी आए देखने के, प्रभास कर लेकिन सारे जादव तो रथ में आए थे, उनको पैदल में आना, बैरागी हो चुके सन्यास कर चुके हैं, पैदल में चलते चलते आकर पहुंचे लेट में, अब सब निपट चुका है, अब आकर ढूंढते ढूंढते अपने आराध्य के पास पहुंचते हैं। उनकी ये दशा देख करके रोते रोते सिसकते हुए कमल चरण में प्रणाम करते हुए भगवान ने मैत्रेय को देखे, अब उठे ही नहीं, वही आसन से रह करके उनका अभिवादन किए। उद्धव की ओर नेहा पूर्ण दृष्टि डाले और फिर भगवान ने उद्धव को बोले, उद्धव आपको बद्रिका जाना है। लेकिन उद्धव आज शिक्षक थे, फिर बोले नहीं, बद्रिका तो मैं जा ही रहा था लेकिन आपके आकर्षक चरण के सानिध्य को छोड़ना मेरे से असह्य है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने पुनरपि उनको ज्ञान का उपदेश किया, जहां मोह आता है मोह को दूर करने के लिए एकमात्र अस्त्र है ज्ञान, वही भगवत ज्ञान, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान वही एकमात्र उपाय है। पुनरपि उद्धव को मैत्रेय की उपस्थिति में इस ज्ञान को भगवान ने अंतिम उपदेश करने लगे और उपदेश के उपरांत मैत्रेय जी को बोले, मैत्रेय जी आपको विदुर जी मिलेंगे, विदुर जी का आपको दर्शन होगा, उनके ज्ञान को उपदेश करना। मैत्रेय जी अपने प्रभु की इस बात को सुनकर कृतकृत्य हो गया, अंतिम समय में विदुर को याद करना, अगणित भक्त है लेकिन इसमें विदुर की याद की, विदुर जी के भाग्य को सोच करके मैत्रेय तो रोने लगे, हो भाग्य है विदुर का, भगवान को विशेष करके उनकी याद की। और उद्धव को आदेश बारम्बार, आप बद्रिका जाना है, आप अलकानंदा में स्नान करो, नर नारायण तो क्योंकि ये ज्ञान को धारण करो, ज्ञान की परंपरा आपको रक्षा करना है, आप उसके अधिकारी। अस्मात लोकात उपरते मई ज्ञानम अद आश्रयम, वही मई ज्ञानम अद आश्रयम, इसलिए उद्धव को छोड़ गए कि भगवान की चिंता है हम लोगों के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुओं की कभी कमी है, ज्ञान की कभी कमी है, कमी है शिष्य की, शिष्यता की कमी है। बहुत भक्त हैं, बहुत लोग हैं लेकिन शिष्य हो सकते हैं, शिष्यता ही नहीं है। शासन शब्द से, शासित शब्द से शिष्य शब्द है, शासित होने की इच्छा किसी का मन में है? भगवद गीता में दूसरा अध्याय में सातवां श्लोक में अर्जुन कहते हैं, शिष्य से हम साधु मांगतम प्रपन्नम, मैं आपको प्रपन्न होता हूं, आपके शरण में जाता हूं और किस भाव से जाता हूं, साधिमान मुझे आप मार पीट करके बुझा सुझा करके सिखाइए, मुझे पढ़ाइए, मेरे से नहीं बनेगा ये मूढ़ बुद्धि, और हमको तो थोड़ा सा रोटी खोटी अपमान कोई गड़बड़ होने से हम लड़ झगड़ पड़ते हैं, शासन होना स्वीकृत नहीं है हमारे द्वारा, इससे ही कैसे बन पाए। तो शिष्यत्व और शिष्यता की कमी है, तो भगवान ने इसलिए ज्ञान को छोड़ रखे इस धराधाम में, उद्धव को अधिकारी समझ करके उन्हीं के ऊपर उसको आश्रय करके, उस मद ज्ञान, जिस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ जानने का आवश्यकता ही नहीं, उस ज्ञान को उद्देश्य उद्धव करके उस इस धराधाम में रखने के लिए उद्धव को छोड़ गए अकेले। भगवान के बाद में वही परंपरा रक्षा करेंगे, बद्रिका में आप उद्धव जी को अति टूटे हृदय के साथ जाने लगे और इतने में ही अभी नव बच चुका है। आप बाद में करेंगे, 5 मिनट तो सारे अंतरिक्ष विमान से भर गया, चतुर्मुख ब्रह्मा पंचानंशी सहस्र बदन इंद्र आदि आदि यक्ष रक्षस गंधर्व किन्नर सारे जो दिव्य लोक के वासी हैं उनको पता है मर्त्य लोक का जो कितने दिन बचेंगे, कौन मरेंगे, कब जाएंगे पता था, अब भगवान के नरलीला के उपसंहार सबको पता था, पूरा भीड़ था देखने के लिए कैसे भगवान की उपसंहार कैसे होगा, कैसे भगवान ने नरलीला के अंत करेंगे, सब भीड़ लगे हुए थे देखने के लिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भगवान की इस अंतिम जदवंश के विनाश लीला को मोरसल लीला करके कहते हैं, हमको समझाने के लिए कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसे नहीं चमक पड़ो कैसे कैसे ऐसे हो गया कैसे नहीं। वो बताते हैं जैसे आप कभी कभी मैजिक देखें, जादू, कभी कभी कोई जादूगर आता है स्कूल कॉलेज में, जादूगर आता है ना मैजिक करने के लिए, तो एक सूखा पेपर ले जाता है, साधारण कागज लेकर के उसको एक बक्सा के अंदर बांध कर क्या कुछ करता है और निकाल करके सब रुपया फेंकता है, सारे करंट करेंसी नोट देखा ना, उसको लेकर बाजार में कोई सौदा नहीं खरीद सकता, थोड़ी देर की जादू है, बाद में वही पेपर ही पेपर है। भगवान की जो लीला है ऐसा ही, ये चकमा दिखाने वाला था, ये सारे जदवंश के विनाश आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये तो एक जादू था, उसको ऐसे मत समझो कि उनका कर्म था, इससे विवाद कोई भगवत महर्षियों के साप भी उनको कैसे अभिभूत कर सकता, भगवत परिकर है उनको ये साप क्या बिगाड़ सकता है, ना किसकी इच्छा ये कुछ नहीं है, भगवान की आपने इच्छा, आपने जाने से पहले आपने परिकर को स्वधाम भेजना ही था, इसलिए ये जादू था दिखाने के लिए, इसे कोई समझा नहीं, मैजिक के बाद ऐसे ऐसे ही हो जाना था, कोई परेशानी नहीं होने की बात नहीं। ऐसे ही भगवान के प्रयाण ब्रह्मा शिव तक भी समझ में नहीं आया, बड़े गौर से देख रहे थे कैसे भगवान के अंतिम प्रयाण कर रहे हैं, और देखते ही देखते जैसे आकाश में मेघ में बिजली चमकता है, और बिजली चमकने के बाद बिजली फिर कहां चला जाता है किसी पता है, कहां आकाश में प्रवेश करके लुप्त हो गया पता नहीं, भगवान यही देखते देखते कहां पता नहीं लगता, अदृश्य हो गए किसी को पता नहीं, पहले से अपने रथ अपने अस्त्र अपने अस्त्र सब जा चुके थे, अब भगवान देखते ही देखते बिजली की तरह कहां चमक गए कहां लुप्त हो गए, बड़े बड़े देव ब्रह्मा शिव आदि गण भी किसी पता नहीं चला, सब देखते देखते ना चले कहां गए पता नहीं। तो इसे भगवान की जो प्रकट और अप्रकट आविर्भाव और तिरभाव ऐसे ही होता है, वो तो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। अब सूर्य जब सुबह उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, क्या कोई चला जाता है क्या, केवल होता है हमारा आंख से ओझल हो जाता है, हम नहीं देख पाते हैं मध्य जीव, लेकिन सूर्य आगे भी रहता है। ऐसे ही अस्मात लोकात उपरत, इस लोक में हम जैसे आंखों से उपरत हो गया तत्कालीन लोक समाज से भगवान ओझल हो गए, लेकिन अभी भी वही है ज्ञान के रूप में अभी भी है, कोई अगर हो उन मद ज्ञान मदाश्रय करके भक्ति आचरण करके उनको अभी भी देख सकते हैं, अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।